गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ये यजुर्वेद है और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये इसका लेखक नहीं है, वो वेदों का केवल अनुवाद करता है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। फोन नंबर इतने। अब इसके 36वें अध्याय में आप देखिएगा, ये 36वां अध्याय है। अत 36वां अध्याय आरंभ। इसमें लिखा है रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां यजु शब्द लिखा है, इसका दो अपसर्ग लगा रखे बस। अब अनुवादकर्ता जब बुद्धिमान होगा उसको लिखना पड़ेगा इस ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और ही, जैसे उन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, मेधावी कर दिया, तो लेकिन वो जहां यहां यजु का अर्थ कुछ और कर दे तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 1 है यो। और यहां देखिए स्वामी दानंद जी ने इसका अनुवाद बिल्कुल जैसे करना चाहिए, मतलब अर्थ यही किया यजु का, और तो बाकी बात की बातें। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, यजुर्वेद लिखना पड़ा और चाहिए था। अगर यहां लिख दें इसका अनुवाद कर दें, यजु का अर्थ है यज्ञ सतुतियों सतुतियां। यजु माने कि यजु यज्ञ सतुतियां जिसके अंदर हों, लेकिन वो पुस्तक लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। अगर हम यजु भी बोले इसको यजु यजुर् भी बोले तो भी यजुर्वेद का बोध होगा। इसी प्रकार यहां देखिए 36, ये 36 अध्याय नंबर 36 का ये है वो जिसने ये गायत्री मंत्र बना के मूर्ख बना रहे दुनिया को। ये तीसरा श्लोक मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है। भूर भव सवय तत्सवितुर वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखो इसका अनुवाद कैसा किया स्वामी जी ने, यहां सत्या प्रकाश में किसी की नकल कर रखी इन्होंने। यहां लिखा है देखिएगा, हे मनुष्यो जैसे हम लोग, हे मनुष्यो जैसे हम लोग और मनुष्य दो आग्रह। अब देखो अब भूर भूर भव सवय का अनुवाद कर रहे हैं। ये भू माने कर्मकांड की विद्या और भूव माने उपासना खंड की विद्या और सवय माने ज्ञानकांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष गुप्त सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप भर्ग का अर्थ है वो तेजों में शरीर युक्त है। इसने लिख दिया उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। तुम लोग वैसा ही ध्यान करो। अब प्रसंग ये चल रहा है कि वो कबीर देव जो है इन्होंने कवि को का आगे अर्थ कर दिया सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई सर्वज्ञ होता है तो उसका अर्थ भी गलत करेंगे कवि का, या तो काव्यकार लिखो वो भी मान जाते हम, लेकिन यह परमात्मा की महिमा चल रही है तो वह कबीर देव है। जैसे यजु शब्द लिखा है वो यजुर्वेद की जानकारी है, अगर उसको हम यजु भी बोलें तो भी समझदार व्यक्ति कहेगा ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब फिर देखिए वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, इसमें यहां आ जाइए। जैसे हम फिर यहां से पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों की को मर्दन करता है, उनके सब संकट टालता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, अब निराकार है तो रूप क्यों लिखा उसका, अपने रूप सच्चाई छुप नहीं सकती, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना चाहिए वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव लिख देते ही वो हम उसको कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो कबीर देव वह कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। 27 में स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 को पढ़ रहे हैं हम, कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब देखना यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला पापों के हरण करने वाला वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकलाकंतर के चारों ओर सब्देमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उस जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे देखो 2 पे उद्देश्य क्या होता है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी जैसे अति बहुत तीव्र गति से आते हो। आप कबीर देव हैं, यहां लिखना चाहिए यजु का अर्थ अगर कोई कर दे तो कैसे पहचानेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, यहां लिखना चाहिए आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब, साहब कहो, देव कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। अब इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में। ये मंत्र नंबर 1 इसमें सफेद लिखा कि पर कबीर देव, मूल संस्कृत में कबीर देव लिखा ऊपर लग रहा है कबीर देव कबीर साहब। यहां देखो वह परमात्मा कवि लिख दिया, कवि का मेधावी अर्थ कर दिया, अर्थ बना इसका वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, बुद्धिमानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। तो परमात्मा का संग्राम विद्वानों को ज्ञान देने के लिए आता, ये ज्ञान के संग्राम में सबके छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा, इसका ये सीधा अर्थ। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं सोलह संख पर हमरा तकिया हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहां चल आए काटन काल का थंदा, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाले। बोलो सतगुरु जी, अब आपके समक्ष सभी पवित्र सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो वही है जो सतलोक से चलकर बनारस में धानक रूप में रहा, जुलाहे रूप में रहा था। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, अपने उस सतलोक से चलकर अमर लोक से, अमर धाम से चलकर यहां पृथ्वी लोक पर काल के लोक में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाते हैं। जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर लग जाते हैं, उन पुण्यात्माओं के सर्व कष्ट वो परमात्मा दूर कर देते हैं और उनका मोक्ष करके सतलोक ले जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। सोलह संख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा और हुक्म हिसाबी हम चल आवे और काटन यम का फंदा। पुणात्माओं आप जी हम सभी एक प्राणी हैं, जीव हैं और जीव की बुद्धि इस काल ने इतनी सीमित कर दी है कि हमने अपनी संतान संपत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता और हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े ऊंच पोस्ट के मंत्री प्रधानमंत्री पल में किसी ना किसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त होकर सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके उपरांत फिर हमें कभी चिंता नहीं बनती, डर नहीं बनता कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा कारण क्या है? जैसे कोई नशे में हो, किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी रखी है या भांग पी रखी है और उसको कोई कहता रहे कि तेरे घर में चोरी होगी, वो ऐसे सुन लेगा चोरी होगी, बस सुन लेता है लेकिन उसका दर्द ना होता, नशा जिसको है। और यदि कोई होश आवास में व्यक्ति है और उसको ये पता लग गया कि तेरे घर में चोरी होगी, बस घनी ना कहने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं, उसको एक बार पूछ सकता है क्या कितना नुकसान हो गया, ये पूछ सकता आदमी उससे, बताने वाला ये कहेगा कि आप ही जाकर देखो। तो फिर उसको ज्यादा समय नहीं लगता, उस चोरी कैसे होगी, कितनी होगी और भविष्य में उसका क्या बचाव होगा, ये वो तुरंत प्रयत्नशील हो जाता है। तो हमारे ऊपर इस काल ने इन त्रिगुणमयी माया का इतना दुष्प्रभाव कर रखा है कि हमारे ऊपर ये इनका तीनों गुणों का, रजगुण धर्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की इस त्रिगुणमयी माया से हम इतने प्रभावित हैं, इतना कुछ हम देख रहे हैं, फिर भी हमें चिंता विशेष नहीं बनती। और यदि किसी को कोई ऐसी घटना घटती है, कोई प्रेरित भी होता है, तो वो फिर काल के द्वारा, इस ब्रह्म के द्वारा, इस ब्रह्मांड के स्वामी के द्वारा वो फिर भ्रमित कर दिया जाता है, उसको गलत साधना पर लगा दिया जाता है, क्योंकि काल के दूत, काल के एजेंट, ये संत गुरु नकली, इसने बहुत गने बना रखे हैं। एक प्राणी परमात्मा की चाह में, तरफ में, किसी भी कारण से, कोई घटना से, दुर्घटना से, या किसी के ज्ञान वचन सुनने से वो प्रेरित हो जाता है। प्रेरित होकर के फिर वो उसका समाधान खोजने के लिए सोचता है बाहर जंगलों में मिलेगा, वो पहाड़ों पर, गुफाओं में, जंगलों में, जहां वो डड़े ढो रहे होते हैं संत, व्यर्थ साधना कर रहे होते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजा कर रहे होते हैं, लोक वेद से वो परिपूर्ण होते हैं, वो घर से निकला हुआ प्राणी उनके जाल में काल द्वारा फंसा दिया जाता है। फिर वो प्यारी आत्मा उन्हीं के द्वारा सुने हुए उस ज्ञान में इतना रंग जाता है और वैसी ही साधना करके काल के जाल में फंसा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है। अब शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ चुकी है कि हम ये कैसे निर्णय करें कि ये साधना शास्त्र अनुकूल है। पहले तो हमने वो शास्त्र सदग्रंथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले हमने उन सदग्रंथों को जानना पड़ेगा जो सदग्रंथ हैं, और जिनको हमने, जिनके अंदर लिखे विवरण को हमने पालन करना है। वो हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। ये हमारे लिए ऑथेंटिक सदग्रंथ हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण हैं, 18 पुराण या उपनिषद हैं, ये किसी ऋषि की अपने का अपना अनुभव है, वो हमारे लिए मान्य नहीं है भक्ति के विधि में। बाकी ज्ञान के सुलझाने में उनका हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन भक्ति की विधि यानी वे ऑफ वर्शिप में हम केवल चारों पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये प्रमाणित है। पुण्यात्मा, जैसे किसी भी मजहब धर्म में आप देखिएगा, उनकी जो साधनाएं हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे नमाज करना क्या होता है? परमात्मा की स्तुति, नित नियम। जैसे आप जी सुबह नित नियम करते हो, सुबह का ये नित नियम यानी प्रतिदिन किया जाने वाला नियमित पाठ्यक्रम, और दोपहर को या दोपहर के बाद जो है असुर निकंदन रमैणी, शाम को आरती, ये समझो नमाज है। वो पांच बार नमाज करते हैं, पांच बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए कंपलसरी बना गए हजरत मोहम्मद जी के और नेता ये इस बाउंडेशन में बंधन में आदेश का पालन करते हुए कुछ समय तो मालिक को याद कर ही सकेंगे, उसकी स्तुति करेंगे ही करेंगे। तो उस स्तुति का जितना वो करते हैं उतना लाभ अवश्य मिलता है। ऐसे जैसे हम वेदों का पाठ करते थे पहले, ये दो ब्राह्मण लोग, और फिर गीता जी का पाठ करते थे श्रद्धालु, अध्याय का किसी अध्याय का, जैसे इस गायत्री मंत्र को जाप करते थे, ये भी नमाज समझो। तो इनसे लाभ क्या है? इससे इतना लाभ है इनसे, जैसे कोई दीर्घ रोगी हो जो बहुत ज्यादा रोग हो, जिसको रुग्ण व्यक्ति है, भयंकर रोग है उसके, और उसको उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना, उपचार के अंदर वर्तमान में ग्लूकोज लगाए जाते हैं। ये जो वेदों का पाठन पठन पाठन नित नियम जिसको कहते हैं, नित प्रति किया जाने वाला आध्यात्मिक पाठ्यक्रम या उसका कोई दोना आरती वगैरह, और वही नमाज है, इनके करने से तो इतना लाभ है जैसे ज्ञान यज्ञ का। और यज्ञ का लाभ इतना समझो जैसे रोगी के लिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से रोग नहीं कटता, शरीर को कुछ सहारा अवश्य मिलता है। रोग काटने के लिए टेबलेट और इंजेक्शन ये अलग से होते हैं जो रोग नाश करते हैं। तो इसी प्रकार अब नमाज जो करते हैं वो काल ब्रह्म के द्वारा हजरत मोहम्मद जी को दी गई पांच स्तुति हैं। ऐसे ही वेद और गीता उस काल ब्रह्म के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। तो इनमें से कोई किस कोई अंश निकालकर कोई एक अध्याय को सिलेक्ट कर लेता है, कोई किसी अध्याय को उसको कंठस्थ याद कर लेता है, प्रतिदिन उसका उसकी आवृत्ति करता है, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, और भी वेद के कई श्लोकों को याद करके उसको प्रतिदिन उनका अध्ययन करते हैं, उनकी आरती टाइप में डेली उनको आवृत्ति करते हैं। तो वो तो ब्रह्म सतर की ही वाणी है, ब्रह्म सतर का ही उसमें शक्ति है, मिलेगी आपको, लाभ मिलेगा। और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, और उसके उससे हम उस परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान के उस वाणी का यदि हम नित नियम करते हैं, उस वाणी से हम नमाज करते हैं, उससे और अधिक लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा कई गुना लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हमने अब नमाज यानी नित नियम, नित पाठ्यक्रम, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, ये ग्लूकोज भी वो अच्छी क्वालिटी की ही लगवानी चाहिए, यानी हमने अपने परमात्मा की अमृत वाणी को ही एज ए नमाज, एज ए नित नियम प्रयोग करने से ज्यादा लाभ होगा, उसको करना चाहिए। और उसके लिए फिर भक्ति की विधि कौन सी है, वे यानी वो रोगनाशक कैप्सूल कौन से हैं, वो टेबलेट्स, वो गोलियां कौन सी हैं, औषधि कौन सी है, अब ये सिलेक्ट करना है। अपुन आत्माओं, अभी आपको बताया कि जैसे पुराण है, पुराणों का ज्ञान, इन फरिश्तों द्वारा, ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा दिया गया है। इन पुराणों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम न तो ज्ञान से हमारा लिंक नहीं बगती विधि में, उससे केवल हमने वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि वो क्या साधना करते थे। अब किसी में एक ये मंत्र है आपको दिए गए हैं, जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है जिसमें सात नाम हैं, तो उनमें से आप देखिएगा श्री शिव पुराण में, श्री विष्णु पुराण में और श्री दुर्गा पुराण में, श्री ब्रह्मा पुराण में, उनमें से कोई एक मंत्र का जाप करता है, कोई तो केवल ओम का जाप करता है और कोई हरम जिसको हरियम कहते हैं, और कोई केवल एक ही नाम का जाप करते हैं, किलम किलम किलम, वो किलियम जो हम बोलते हैं आपको। तो पुणात्मा ये जो है, जैसे हम एक कोई गाड़ी है, कार है, कोई तो एक टायर को लेकर घुमाता फिर रहा, कट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है, वो तो बालक खेल रहे हैं हमसे। कोई स्टेयरिंग लेकर निकाल रहा है, कहता हट जा गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी चला कार चला रहा हूं, बालक खेल लाग रहे हैं जैसे। तो इन संतों ने, इन ऋषि महर्षियों ने और इन गुरुओं ने, देवताओं ने ऐसा ही खेल खेला है। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर वो गाड़ी बनती है और फिर वो गाड़ी ठीक चलती है। तो इस दास ने, परमात्मा ने कृपा की, आध्यात्मिक इंजीनियर बनाया, आध्यात्मिक डॉक्टर बनाया। तो राम नाम की गाड़ी भी दास ने तैयार कर रखी है, बिल्कुल ओके सब पार्ट्स मिलाकर। हमारे सदग्रंथों में जेनियन पार्ट्स हैं, जेनियन बिल्कुल, लेकिन उनको हम मिला नहीं सके, उनको उनसे हम गाड़ी नहीं बना पाए थे अभी तक। तो इस प्रकार ये हमारा भक्ति क्रम सफल नहीं हो रहा था और हमारा मानुष जीवन भी व्यर्थ हो रहा था। तो वो मंत्र हमने वेद, प्रथम वेदों से, यानी वेदों से, और क्योंकि वेदों को साथ दास इसलिए ले रहा है क्योंकि वेद भी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है, और वेदों को इस काल ब्रह्म के कंप्यूटर अंतःकरण में, इसके हर्ट में डाल दिया गया था और वहां से फिर इसी से बाहर निकलवा दिया, जैसे किसी का उल्टी गिर जाया करो, उसके बस की बात नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने इस काल के अंदर से ये चारों वेद, पांचों वेद निकलवा दिए। इसने क्या गलती की, वो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था वो निकाल दिया, उसको सभा कर दिया, समाप्त कर दिया, दबा दिया, मिटा दिया, वो दिया नहीं। और चार वेद जिसमें वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की थी वो दे दिया। उन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग केवल ब्रह्म तक का है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक मंत्र नंबर 15 में, ये देखिएगा यजुर्वेद इसके अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा संपूर्ण 40 अध्याय मैरी सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फॉक्स फोन नंबर है, फैक्स फोन नंबर। इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 अध्याय और 15वां श्लोक मंत्र या श्लोक कुछ भी को इसको इसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम बसमांतम शरीरम, बसमांतम शरीरम ओम करतो समर किल्बे समर कर्तुम समर ओम करतो समर किल्बे समर कर्तुम समर, पंद्रमा श्लोक 40 में जाए। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम बसमांतम शरीरम, इसका क्या अर्थ बनता है, साधना करने वाले प्राणी का स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर में है जब वो अंत होता है उस समय उसका जो शरीर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है वो उसमें अमृतत्व हो जाता है, यानी उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। कितना होता है, क्योंकि जिस मंत्र से हम जितनी कमाई करेंगे उतनी ही पावर उसकी उतनी ही शक्ति हमारे में प्रवेश होगी। तो इसमें कहा गया ओम करतो समर और किल्बे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, करतो माने काम करते करते सिमण कर, और किल्बे माने किस बिल्कुल किलबलाहट कहते ना, ये किलबलाहट माच गई बहुत कसक के साथ, यानी विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्तम समर। अब इसने कैसा अनुवाद किया है महर्षि दानंद जी ने, हे कर्म करने वाले जीव, कर्तव्य माने कर्म करने वाले, इसका अर्थ बनता है अच्छा तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। देखो ये देखे का पता था एक नहीं, अब इसमें सीधा लिखा ओम का स्मरण कर, और ये स्वामी जी कह रहे हैं शरीर छूटते समय ओम, जिसका ओम नाम है ना, जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण कर, ओम का नहीं, ओम जाप नहीं करना, उसका केवल जिसका ओम नाम है, इस नाम वाची यो ओम लिखा ना ओम, इस ओम नाम वाच्य जिसका यो ओम नाम है, इस उस ईश्वर को स्मरण कर, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नाम वाच्य यानी यहां लिखना था इस ओम का स्मरण कर, ओम करतो समर है, सीधा सा अर्थ है बता इसमें, ओम नाम का जाप काम करते करते, काम करने वाले जीव इसने लिख दिया, काम करते करते एक कर्म योगी इसको समझो, हे कर्म योगी काम करते करते ओम नाम का स्मरण कर, और इस ओम नाम का स्मरण विशेष कसक के साथ कर, और अपना विशेष कर्तव्य समझ कर काम कर। इन्होंने कैसा अनुवाद किया इसको, तो वैसे भी हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर, ओम का नहीं, इस नाम वाच्य जिसका यू नाम है, ओम नाम है उसका स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का के स्मरण करे, अपने किए का कर्तव्य माने किए का स्मरण कर, ये संस्कार वायु धनज्यादि वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ अथ इसके अंतर यह शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि भस्म आश्रय शरीर भस्म तम अंत में भस्म हो जाने वाला ऐसा जानो, अपुण्य आत्माओं इसका सीधा सा असर बनता है कि वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। ओम नाम का जाप फाइनल है और ये मंत्र वेदों में है, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त यदि किसी ऋषि ने कोई जाप अपने मनमुखी साधना की है किसी मंत्र की, तो उस मंत्र का जाप मोक्षदायक नहीं है, उसको हमने नहीं जपना, उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है और इसमें संकेत दे रखा है उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का। सांकेतिक है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वेद ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता, वो ब्रह्म उस यथार्थ भक्ति मंत्र से परिचित नहीं है, केवल अपने सत्र का ज्ञान वो सही बता रहा है कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और व्यवहारण यानी उच्चारण करके अनुसमण करता हुआ जो प्रयाति तदंदेहम शरीर छोड़कर जाता है, सह याति परमाम गतिम, वह इस ओम से मिलने वाले जो अमरत्व है, जितना सथाई तव इस ओम से मिलेगा, उस परम गति को प्राप्त होता है। इन्होंने कैसा अनुवाद किया है, यहां से शुरू होता है, ये इकट्ठा करके इन्होंने 12 और 13 का। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ठीक किया, इसने अनुवाद ठीक किया है। दान देने तो कुछ भी नहीं करना आवा था, मैं ऋषि दान उसको नहीं ज्ञान था वेदों का बिल्कुल भी। इस एक अक्षर ओम पीछे पड़ लिया, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्यवहार करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये कोई बात है, यह लिखना था मुझ ब्रह्म का, यहां निर्गुण ब्रह्म लिख दिया इसने, ऋषि दा लिख रखा ब्रह्म माने ब्रह्मा माने मुझ, मुझ ब्रह्म का ओम पीछे लिखा, ओम यह एक इति माने यह है एक अक्षर है, एक अक्षर है ओम उच्चारण करता, जो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वेदों में गीता जी में बहुत ही निर्णायक और तरती वाइज ज्ञान दिया हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उस ब्रह्म को तत्ब्रह्म को जानकर और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित हो जाता है और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये पूछा है किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है? तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा जो सिमरन करता है वो मुझे प्राप्त होता है, ओम मेरा नाम है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र ये आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में क्लियर कर दिया। फिर आठवें गीता जी के आठवें अध्याय के ही 8, 9 और 10 तीन श्लोकों में उस तत् ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में कहा है कि जो उसकी साधना करता है और उसकी उसके साधना का कौन कौन सा मंत्र है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को कौन से को जो चौथे अध्याय के गीता जी चौथा अध्याय के श्लोक नंबर 32 में बताया कि जो सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से लिखा गए हैं वो ज्ञान और वो मंत्र है, उसको तू तत्वदर्शी संतों से समझ, उनके दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उसके लिए कहा कि वो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में साधना का। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म की प्राप्ति का उसकी साधना के ये तीन मंत्र हैं जिसमें ओम भी इंक्लूड है, क्योंकि तीन परमात्मा है, एक सर्वपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दे रहा है, और एक अक्षर पुरुष है जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर लिखा है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में। और 17 में फिर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तेरम आवि से विवर्ती अवय ईश्वर है। तो उसकी साधना का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है कि ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के सिमरण का केवल इस तीन मंत्र ओम तत् सत का सिमरण करने का निर्देश है। इति निर्देश है, निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स, ये निर्देश है। और वो त्रिविध समर्थ है, तीन विधि तीन प्रकार से उसका सिमरण होता है, इतना संकेत उसने कर दिया। लेकिन काल इन मंत्रों को जानता नहीं, बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बताने से उसका विनाश हो जाए, सारी प्राणी भाग जाए, तो तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिया। क्योंकि ये ज्ञान जो वेदों का परमात्मा द्वारा दिया गया, इस काल को दिया, काल ने आगे बोला, जब काल गीता बोल रहा था तो भी परमेश्वर ने अपने रिमोट से ही इससे ये रियल जो है ज्ञान कहा दिया आखिर में, ताकि सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी जब हम पढ़ें तो इन प्रमाणों से हम उस सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी पर विश्वास कर लेंगे। और जब हमें कबीर वाणी पर विश्वास हो जाएगा फिर हमें किसी सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो सदग्रंथ हम आपको दिखा रहे हैं या अन्य ग्रंथ जो हैं, इनको तो इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आप जी इनसे अपरिचित हैं, और आप जी के जो मार्गदर्शक गुरु जी रहे हैं वो भी इनसे अपरिचित थे, वो केवल आप जी को लोकवेद दंत कथा सुनाया करते थे और मनमुखी मनमाना आचरण आपसे करवाते थे, मनमानी पूजाएं करवाते थे, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में रिजेक्ट किया है कि शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनका कोई सिद्धि होती है और न ही वो उनकी गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं, प्रथम सुख हो, फिर हमें ऐसी सिद्धि माने शक्ति हमारे अंदर आवे ताकि हम यहाँ के काल के लोग से हमारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी भक्ति की विधि से, भक्ति इस सत मंत्र से, कि हम यहाँ से जब चलेंगे हमें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि हम सबका फैसला करवा सबका जो है ना ऋण उतारते हुए चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1। ये देखिएगा, ये है अथ अष्टमोध्याय 8वां अध्याय। इस प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं, 29वें श्लोक में, 29वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते, माम आश्रिते माने मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर जो आश्रित हो गया कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और तत्वदर्शी संत फिर जो ज्ञान देगा उस तत्ब्रह्म के बारे में सारे अध्यात्म ज्ञान को सही से समझाएगा, उसके पश्चात जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते, माम आश्रिते यानी मेरी, मेरे पर आश्रित होकर इस वचन ज्ञान पर यतन्ति, ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते, मेरे ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए धातुम ज्ञान पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा मैंने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष प्राप्ति के लिए ये यतन्ति, जो यतन करते हैं, जो परिश्रम प्रयत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं, जानते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम, कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम, वे सभी कृष्ण माने सारे अध्यात्म कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं, और अखिलम यानी सारे कर्म से भी परिचित हैं, और वे उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो यत्न करते हैं, जो मेरे इस द्वारा दिए गए ज्ञान पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, तो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, सारे अध्यात्म कर्म, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को तथा वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। अब इस तत्ब्रह्म के बारे में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे उस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी तत् ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है, इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैविम किम उच्यते। इसका उत्तर, हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर इसने तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में। ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका तीसरा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यहां देखना, अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रमण करता हुआ, अपना तो इसने ओम नाम बताई रखा है, श्रमण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मदभावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत कर रखा है उन्होंने, मदभावम माने मेरे भाव में, मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, और जहां आशा तां बासा होई। अब 6वें में नियम बताया है कि ये नियम है कि जो अंत समय में एक कुंती पुत्र यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, यानी उस परम अक्षर परम के भाव में शरीर छोड़कर जाता उसको प्राप्त होता है। यानी जो भी जिसके भाव में शरीर छोड़कर जाता है तो शरीर त्याग करता उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावती, तद भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जैसे हम हनुमान पुजारी हैं और मरेंगे जब तक हनुमान में मास्ता रह जाएगी, तो ऐसे ही हम तत्परम के पुजारी हैं तो तत्पर मास्ता रह जाएगी, यदि हम ब्रह्म के पुजारी हैं तो ब्रह्म मास्ता रह जाएगी। इसका ये नियम है। फिर सातवें बताता है कि हे इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रह और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब स्पष्ट किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा तो स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब आठवें नौवें और दसवें में बताया है, आठवें बताया है, इसका आगे बताते हैं। ये आठवां है, ये आठवां, ये देखिएगा, ये आठवां है यहां पर और इसका यहां अनुवाद है। आठवें अध्याय का आठवां, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, ध्यान नहीं है ये तो, जैसे अनुवादक की जिसी सोच है उसने कर दिया, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बतावेगा उस पर सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना। ये पार्थ, गीता ज्ञानदाता कहता किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि ये पार्थ परमेश्वर के, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, आगे फिर बताएं, दूसरी ओर न जाने वाले चित से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में। नौमी में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियंसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमस्य प्रस्तात। अब यहां कवियम शब्द है ना, जैसे कल यजुर्वेद में दिखाया था 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में वहां यजु लिखा था, तो अनुवादकर्ता ने उसको यजुर्वेद लिखा क्योंकि उस परिचित आदमी ही उसको सही अनुवाद कर सकता है। तो यहां कबीर परमात्मा लिखना, ये कबीर देव समझे हम, ये कवियम, कवियम का अर्थ है इसको हम कबीर देव, कबीर देव को जो पुराणम यानी आदि आदि परमात्मा सनातन परमात्मा अनुशासिताराम अणो अणशांसी जो कबीर देव, इनमें सर्वज्ञ लिख दिया, जो कबीर देव को, जो पुरुष कबीर देव को, वो कबीर देव कौन है, अनादि सबके नियंत्रता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप, अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाश रूप आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा यानी सूर्य की तरह चमकदार साकार, आदित्य यानी सूर्य जैसा, सूर्य की तरह तेजोमय यानी सूर्य साकार है, तो आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन अविद्या से अति परे अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परेश परमेश्वर का जो सेवन करता है, है, है। ये आठवां पढ़ दिया, नौवां पढ़ दिया अपने, अब दसवां पढ़ लेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष जो उस परमात्मा कबीर देव की जो साधना करता है सचिदानंद घन ब्रह्म की, वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग माने भक्ति, भक्ति की शक्ति से बरकटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा सौभाग्य है आपका, आपका इस बिचली पीढ़ी में जन्म, और भी सौभाग्य है कि आप मानव शरीर प्राप्त हो, उससे भी और अधिक पुण्य है आपके कि आप जी को ये मार्ग सहज में मिल रहा है। लखबर सूरा जूज ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में जो सतगुरु शरणा ले। आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, युगों युगों के आपकी भक्ति के जो कर्म हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और उन्हीं कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले ही क्रियाओं से तप 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 कार से कोई यह हठ योग नहीं होता। गीता जी में तप को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है 18वें अध्याय में, जैसे वाणी का तप, वाणी का तप जैसे कोई सत बोलते हैं परमेश्वर कबीर जी ने सत बोला, उनके साथ कितना संघर्ष हुआ, कितना परेशान किया गया, वो तप था। तो इसी प्रकार अपनी भक्ति कर्म में कोई बाधा करता है उसके साथ हम संघर्ष करते हुए अहिंसा से हम उसके साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उल्टे नहीं हट रहे हैं, ये हमारा तप होता है। तो पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले भक्ति कर्म से सिमरन करने में जो हमें कठिनाइयां आती हैं किसी प्रकार का भी, जैसे हम चलते फिरते मन को रोकते हैं, तो ये भी हमारा तप है। तो ऐसे पिछले ही संस्कारों से आपको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा। अब आपको दिखाते हैं कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस तीन मंत्र के जाप का प्रमाण है जिसके बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। देखिए 17वां अध्याय, और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने खुद यहां ठीक किया, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का जो सिमरण करता है वो तीन विधि से सिमरण होता है, और इसी का निर्देश है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये तो सर्वब्रह्म का, सर्वब्रह्म सर्व पुरुष, और ये है अक्षर पुरुष का तत्, ये सांकेतिक है गुप्त है, और ये सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की शक्ति इस तत् सांकेतिक है ये शब्द, ये अलग है वो मंत्र, और ये सत्य भी गुप्त है वो अलग मंत्र है। तो ये ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का, ये तत् सांकेतिक है। तो ये सत्य और ये सत्य भी सांकेतिक है, फिर ये आपको दिया जाता है, ये दास आपको देगा ये सारनाम समझो, तो तीनों मिलकर के फिर इनका अलग से जाप होता है। इन तीनों पहले ही सतनाम दिया जाता है जिससे आपका इन दोनों मंत्रों की खूब भक्ति हो जाएगी, तब तीसरा नाम आपको दिया जाएगा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव परम पुरुष। ओम तत्सत इति निर्देश है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। इसकी तीन प्रकार से सेवन, तीन विधि है इसके सेवन करने की, और केवल इसका निर्देश है।